Tamso ma jyotirgamayam. Expel the darkness and lead me towards light. जी हाँ दर्शकों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व समस्त विश्व को सत्य ज्ञान की ओर ले चलता है। तभी तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। और इसी उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु हम आप सभी के लिए लाए हैं एक यूनिक और आध्यात्मिक जगत का फर्स्ट टाइम एवर चैट शो अंतर के पट खोल, जिसमें हम महाशिवरात्रि पर्व से जुड़ी हुई कुछ मुख्य कथाओं का आध्यात्मिक रहस्य व सत्य ज्ञान जान पाएंगे। और हमारे इस शुभ कार्य में हमारी सहयोगी बनेंगी ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी बहन जी, जो कि लगभग 45 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में अपने तपस्वी और मूल्यनिष्ठ जीवन के द्वारा अनेकों आत्माओं का मार्गदर्शन कर रही हैं। आप अपनी वाक्पटुता व मीठे स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सीनियर राजयोग शिक्षिका भी हैं। वर्तमान समय भारत की राजधानी दिल्ली के साथ साथ आप अपनी अलौकिक सेवाएं रशिया, बाल्टिक कंट्रीज और CIS में दे रही हैं जनरल डायरेक्टर के नाते। बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आने का। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आज जिस विषय के ऊपर हम बात करेंगे, महाशिवरात्रि की जो कथा है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, वह एक महत्वपूर्ण चरित्र से जुड़ी हुई है जिनका नाम है भागीरथ। दर्शकों, आप जानते ही होंगे कि भारत में ये गायन है और ये माना जाता है कि भारत में गंगा लाने का जो श्रेय है वो भागीरथ को जाता है। तो बहन जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न ही यह है कि आखिर भागीरथ कौन थे?
मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा है मैं आध्यात्मिक रहस्य आपको बताऊं, तो आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भागीरथ नाम कोई संज्ञावाचक नहीं है, ये गुणवाचक है और कर्तव्यवाचक है। भाग्यशाली रथ, वो शरीर जिसे भाग्यशाली शरीर कहा जाएगा। क्यों, वो तो मैं आपको पुनः स्पष्ट कर सकूंगी।
तो इस कलयुगी दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा भाग्यशाली रथ या भागीरथ नाम का व्यक्ति हो सकता है? ये तो बड़े ही अचंभे की बात है, ये तो बड़े ही हैरानी की बात है। आप इसके ऊपर और थोड़ी ज्ञान या रोशनी डालिए।
ये मैं आपको बताना चाहूं कि वास्तव में परमात्मा शिव निराकार है, अव्यक्त मूर्त है। उनका मनुष्य दृश्य अपना शरीर नहीं है। जब वो इस धरा पर अवतरित होते हैं मानव मात्र के कल्याण के लिए, तो जिस मनुष्य रूपी तन में प्रवेश करते हैं, सन्निवेश होता है जिसमें उनका, उन्हीं का नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा गया है।
तो ये तो और ही अचंभे की बात है कि आप कह रही हैं भगवान को किसी का आधार लेना पड़ता है। अब भगवान के विषय में तो कहते हैं वे सर्वशक्तिवान हैं, तो उन्हीं किसी मनुष्य तन का आधार क्यों लेना पड़ता है?
वास्तव में देखा जाए तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि भगवान सर्वशक्तिवान है, लेकिन सर्वशक्तिवान परमात्मा जिनको कि मैंने आपको बताया कि अव्यक्त मूर्त है, ज्योति स्वरूप है, जब वो इस धरा पर मनुष्य मात्र के कल्याण अर्थ आते हैं, तो मानव को ज्ञान सुनाने के लिए उन्हें मानव रूप ही लेना पड़ता है। लेकिन वो मानव रूप मानव के सदृश्य जन्म लेकर नहीं लेते, लेकिन वो पर काया प्रवेश करते हैं, और जिस काया में प्रवेश करते हैं उन्हें हम भागीरथ के नाम से जानते हैं, अर्थात भाग्यशाली रथ है, जिन्हें मैंने ये नाम भी दिया कि परमात्मा ने स्वयं प्रवेश होकर उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा भी रखा।
तो ऐसी क्या विशेषताएं रही इस तन में या इस व्यक्ति में कि भगवान को उनका तन का आधार लेना पड़ा? ऐसी क्या विशेषताएं थी भागीरथ नामक व्यक्ति में?
क्योंकि परमात्मा कल्याणकारी है, और जब वो सृष्टि पर अवतरित होते हैं उन्हें मानव मात्र के कल्याण हेतु ही आना पड़ता है, और जिस समय उन्हें कल्याण करने अर्थ मनुष्य सृष्टि पर आना होता है और वो उस रथ में प्रवेश करते हैं, तो अवश्य उस रथ में विराजित आत्मा एक ऐसी आत्मा होनी चाहिए जिसमें परमात्मा के कर्तव्य को कार्यान्वित करने की वो क्षमता हो, जो इस रथ के द्वारा उनका कर्तव्य प्रत्यक्ष हो सके, तो सर्व प्रमुख उनकी जो विशेषता थी वो थी जीवन का समर्पित, सब कुछ प्रभु के अर्पित। वो भक्ति की भावनाओं में भी जब भक्ति पूजा किया करते थे, दान पुण्य स्वयं करते थे और यही शब्द बोला करते थे सर्व आत्माओं के प्रति, जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये केवल फल के भागी मैं न बनूं, लेकिन सर्व आत्मा इस फल का भागी बने। तो परमात्मा जो विश्व के कल्याण हेतु आते हैं, सर्व आत्माओं के कल्याण हेतु आते हैं, तो उन्हें एक ऐसे ही आधार की आवश्यकता होती है जिसकी बुद्धि बेहद हो, हद में ना हो।
बहन जी, आप इस चरित्र भागीरथ का, जिन्हें आप प्रजापिता ब्रह्मा कहकर भी संबोधित कर रही हैं, आप इनका लौकिक परिचय कुछ हमें दीजिए कि क्या बैकग्राउंड था इनका।
ये वास्तव में सिंध हैदराबाद में रहते थे और इनका शारीरिक नाम दादा लेखराज था और सिंध हैदराबाद के एक प्रसिद्ध हीरे जवाहरात के व्यापारी थे और इनका बिजनेस कलकत्ता और बॉम्बे में भी चलता था। और आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े व्यापार के लिए कोई जनसाधारण से तो व्यापार नहीं चलेगा। इनका व्यापार उस समय के नेपाल नरेश जोधपुर उदयपुर के राजाओं से चलता था और ये बहुत भक्ति भावना में इस प्रकार पूरी थे कि गुरुओं में श्रद्धा और अपने तन और धन को उस प्रभु की सेवा में लगाए रखना। मैं क्या उनकी विशेषताएं बताऊं?
बहुत पहले से ही उनके अंदर भक्ति भाव बहुत ही संपूर्ण था, पूरे निष्ठा थी, पूरी भक्ति के अंदर पूर्ण निष्ठा थी।
भक्ति के अंदर निष्ठा कहो, प्रभु के प्रति निष्ठा कहो, सत्य की खोज उनके अंदर बहुत ज्यादा थी। इसलिए उन्होंने 12 गुरु किए। 12 गुरु से मेरा तात्पर्य क्या है, एक गुरु के पास गए, कुछ प्रश्न पूछा उस सत्य की खोज के लिए, लेकिन उन गुरुओं ने इस महान विभूति को कुछ बताया और दूसरे गुरु की तरफ रेफर कर दिया कि आप अगर उनके पास जाएंगे तो आपको इससे ज्यादा कुछ मिलेगा। इस प्रकार 12 गुरु आपने किए और प्रत्येक गुरु में संपूर्ण रूपेण श्रद्धा थी, क्योंकि प्रभु में श्रद्धा और प्रभु के साथ साथ गुरु में भी श्रद्धा थी।
बहन जी, आप जो ये चरित्र भागीरथ का जो चरित्र है इनके विषय में हमें बता रही हैं, ये तो बहुत ही प्रेरणादायी लग रहा है, लेकिन इनके बारे में हम और पूछेंगे आपसे आगे, क्योंकि अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक लेने का। हम अभी दर्शकों, अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर भागीरथ कौन थे इस सत्य के विषय में और गहराई से जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के। महाशिवरात्रि का पावन पर्व अपने अंदर ढेरों सीक्रेट्स को समाये हुए हैं, कई मिस्ट्रीज हैं, और आज जिस मिस्टीरियस कैरेक्टर का हम जिक्र कर रहे हैं वह है भागीरथ, जिनका आध्यात्मिक सत्य, आध्यात्मिक रहस्य हम जान रहे हैं ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी बहन जी के द्वारा। बहन जी, ब्रेक में जाने से पहले आप हमें भागीरथ अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा, जैसे कि आप उन्हें संबोधित कर रही थी, आप इनके बारे में हमें इनका लौकिक परिचय दे रही थी। आपने बताया कि एक डायमंड ज्वेलर थे, बहुत भक्ति करते थे, कई गुरु उन्होंने किए, ज्ञान की पराकाष्ठा की तरफ जाने वाले थे। लेकिन अब मेरा ये प्रश्न आपसे है कि ऐसा कौन सा वो दिव्य कर्तव्य है या था जिसके लिए परमात्मा को एक साधारण मनुष्य के तन का आधार लेना पड़ता है या उनकी मदद लेनी पड़ती है?
वास्तव में परमात्मा शिव शब्द ही हमें संबोधित करता है या स्पष्ट करता है कि वो जब भी धरा पर आएंगे या उनका धरा पर आना विश्व की आत्माओं का कल्याण ही करना है, क्योंकि उन्हें कल्याणकारी ही कहा गया है। शिव शब्द ही कल्याणकारी को संबोधित करता है और कल्याण का कर्तव्य करने के लिए इस धरा पर आते हुए किस समय है, आप महाशिवरात्रि नाम से भी समझ सकते हैं कि रात्रि शब्द अंधकार को संबोधित करता है, तमोगुण को संबोधित करता है और शिव शब्द कल्याण को संबोधित करता है।
तो इस पूरे परिपेक्ष में हम किसको महत्वपूर्ण माने, भागीरथ को या शिव को, कौन है ऊंचा कौन है फिर?
वास्तव में देखा जाए ऊंचे तो ऊंचा तो परमपिता परमात्मा शिव ही है, कल्याणकारी है, जो विश्व में कल्याण अर्थ आत्माओं के आते हैं। और मैं समझती हूँ ये समय के भी बलिहारी है कि जब इतना तमोगुण का समय आया और इस समय में ही उस सर्व शक्तिवान परमात्मा को इस धरा पर आने के लिए प्रेरित कर दिया। और परमात्मा इस धरा पर आकर आत्माओं के कल्याण का कर्तव्य करते हैं।
लेकिन जो आत्मा या जो मनुष्य उनके इस कर्तव्य के लिए निमित्त बनते हैं वो भी जरूर भाग्यशाली ही कहलाए जाएंगे, या उनका भी वो भी परमात्मा से ऊंचे कहलाना चाहिए उन्हें भी, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को उनके कर्तव्य करने के लिए सहयोग दिया। इसमें आप क्या कहेंगे कि दोनों में से ऊंचा कौन है? यानी महाशिवरात्रि का पर्व जो मना रहे हैं जिसमें भागीरथ का भी काफी जिक्र होता है, तो कितना सम्मान।
मैं आपकी बात समझ गई। आप यही कहना चाह रहे हैं कि जिस रथ में आए उनका महत्व तो ज्यादा है, या जो उन रथ में आए उनका महत्व तो ज्यादा है? वास्तव में देखा जाए दोनों का अपने अपने स्थान पर महत्व तो है, परंतु परम महत्व तो सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव कल्याणकारी का ही है। परमात्मा शिव कल्याणकारी को जब इस विश्व की आत्माओं के कल्याण अर्थ आना होता है, तो मैं जैसे कि पूर्वक बता चुकी हूँ कि उन्हें मानवीय तन का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य दृश्य जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आते हैं। जैसे मनुष्य आत्माएं शरीर लेती हैं, शरीर छोड़ती हैं, इन सब चीजों से परे हैं, लेकिन जिस शरीर में वो आए वो शरीर भी भाग्यशाली है कि स्वयं भगवान ने उस रथ को चुना और उस रथ के द्वारा मानव मात्र के कल्याण का कर्तव्य उनके द्वारा आरंभ किया। भाग्यशाली तो वो भी बहुत
हाँ है, इसीलिए शायद उन्हें भागीरथ भी कहते हैं,
क्योंकि रथ मानव शरीर है ना, और भाग्यशाली शरीर है। जब भगवान जिस स्थान में आ जाए, आप सोचिए उससे बढ़कर और भाग्य कौन सा हो।
बहन जी, महाशिवरात्रि के संदर्भ में या शिव पुराण अगर मैं कहूँ, उसमें ये भी एक कथा आती है, नंदी बैल एक है, उसका नंदी बैल का काफी उल्लेख किया गया है, तो ये भी स्पष्ट कीजिए कि नंदी बैल वाकई में कौन थी या उनका कर्तव्य क्या रहा, ये जरा स्पष्ट कीजिए।
आप नंदीगण से आपका कहने का तात्पर्य है, क्योंकि नंदीगण जो शिव परमात्मा की सवारी के रूप में दिखाया गया और बैल के रूप में दिखाया गया, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि कुछ शब्द अलंकारिक होते हैं और उन अलंकारिक शब्दों को कुछ रूप से चित्रित किया जाता है। वास्तव में नंदीगण कोई बैल की बात नहीं है, लेकिन परमात्मा शिव विश्व का परिवर्तन करते हैं, लेकिन जिनके तन में प्रविष्ट होकर परिवर्तन करते हैं, नए विश्व का निर्माण करते हैं, और उन्हीं का नाम वो प्रजापिता ब्रह्मा भी रख देते हैं, क्योंकि अगर परमात्मा नए सृष्टि का निर्माण करते हैं तो ब्रह्मा भी साकार रूप में उस नव सृष्टि के निर्माण के निमित्त होते हैं। इसलिए मंदिरों में नंदीगण उस साकार प्रजापिता ब्रह्मा की याद का ही अलंकारिक रूप है और उन्हीं के स्वरूप को ही इस रूप में चित्रित किया गया है।
बहन जी, आप कह रही हैं कि इस कलयुग के समय में आत्माएं तमो प्रधान या विकार से ग्रसित हो गई हैं, तो इस संदर्भ में अगर किसी को आत्मा का शुद्धिकरण करना है या स्वयं का शुद्धिकरण करना है, उसके लिए आज जो मान्यताएं हैं दुनिया के अंदर मौजूद, तो वो तो भारत में खासकर, तो वो तो ये है कि आप जैसे मकर संक्रांति का पर्व हुआ या कोई भी ऐसे विशिष्ट पर्व हुए, उस समय नदियों में जाकर स्नान करें। तो अब नदियों में जाकर स्नान करना अर्थात अपने जो पाप हैं उनको पुण्यों में कन्वर्ट करना होता है, इस बात में कितना सत्य है?
वास्तव में ये भी एक चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र चित्रित कर दिया है और वो गंगा का स्वरूप दिखाया।
हाँ जी।
क्योंकि आप सब समझ सकते हैं कि जल शरीर की मैल धोता है, शरीर को शुद्ध करता है, लेकिन प्रत्येक तन के अंदर आत्मा जब कर्म करती है और जैसा कर्म करती है वैसे संस्कारों की रिकॉर्डिंग आत्मा पर होती है। इसलिए पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, महान आत्मा या देव आत्मा कहा जाता है। पुण्य शरीर, पाप शरीर, महान शरीर या देव शरीर ने कहा जाता है। तो शरीरों की मैल तो नदियों से स्वच्छ हो सकती है, लेकिन आत्मा को स्वच्छ करने के लिए ज्ञान जल की आवश्यकता होती है। अब ज्ञान जल को आर्टिस्ट कैसे दिखाए, तो उन्होंने गंगा के स्वरूप में दिखाया कि जैसे ये पावन कर रही है, इससे पावन हो जाएगा प्राणी, लेकिन आत्मा को पावन करने के लिए ज्ञान गंगा का सहारा लिया जाएगा, ना कि जल के सहारे से आत्मा पावन हो सकती है।
तो यहाँ पर भागीरथ का जो रोल है वो है कि भागीरथ ने ज्ञान गंगा, यानी वो गंगा स्थूल गंगा नहीं परंतु ज्ञान गंगा लाकर।
बहुत अच्छी ये बात आपने मुझे हिंट दे दिया, क्योंकि परमात्मा शिव की जटाओं से गंगा आई, भागीरथ ने उन्हें अपने कमंडल में ले लिया और किस प्रकार गंगा प्रवाहित होने प्रारंभ हुई तो आत्माओं ने स्नान कर अपने को पावन बनाया।
बहन जी, इस विषय पर हम और बात करेंगे क्योंकि अभी हमारा समय हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। तो दर्शकों, इस बात को और आगे जारी रखेंगे क्योंकि बहुत ही रोचक बात है। हम सबको जानना चाहिए कि हम अपने पापों से कैसे दूर हो सकते हैं, हम अपने पापों को अपने सिस्टम से कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैट शो अंतर के पट खोल में। और आज जिस कैरेक्टर के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं वह है भागीरथ, और जिनके बारे में ब्रह्म कुमारी चक्रधारी बहन जी ने हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया है। और अभी लास्ट ब्रेक में आप हमें बता रही थी कि अगर अपने पाप हमें धोने हैं तो उसके लिए हमें स्थूल नदी में जाकर उसको गंदा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम ज्ञान के द्वारा अपने अंदर परिवर्तन लाएं।
मैं यही बात सुना रही थी कि जल शरीर की मैल तो उतार सकता है, लेकिन आत्मा की मैल उतारने के लिए जल समर्थ नहीं। वास्तव में देखा जाए परमात्मा शिव वे आत्माओं की मैल उतारने के लिए अथवा आत्माओं का कल्याण करने अर्थ सृष्टि पर अवतरित होते हैं, और वे मनुष्य आत्माओं को ज्ञान रूपी जल देते हैं।
यहाँ पर ये शब्द अवतरण यही हुआ ना, जैसे कि भागीरथ तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं ब्रह्मा के, जैसे आपने बताया हमें।
ये परमात्मा का अवतरण से मेरा तात्पर्य है परकाया प्रवेश। और परमात्मा जब उस तन में प्रविष्ट होते हैं तो प्रविष्ट होकर ज्ञान सुनाते हैं, और वो ज्ञान की ऐसी गंगा प्रवाहित होती है जिस ज्ञान को धारण करने वाली आत्माएं जो और आत्माओं को भी ज्ञान सुनान करा करके उन्हें भी शुद्ध और पवित्र बनने की प्रेरणा दे देती हैं, और प्रेरणा नहीं उस परमात्मा के ज्ञान से वे भी अपने जीवन को पवित्र बनाने में समर्थ हो जाती हैं। उस ज्ञान को धारण करने वाली वो आत्माएं ज्ञान गंगाएं कहलाती, और वो ज्ञान गंगाएं सर्वशक्तिवान कल्याणकारी परमात्मा के ज्ञान को जब अन्य आत्माओं को देती हैं तो वे भी पावन होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो ज्ञान ही आत्माओं को पवित्र कर सकता है, जल आत्माओं को पवित्र नहीं कर सकता है।
परंतु बहन जी, यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि कई आत्माएं अपने विषय में ऐसा सोचती हैं और ऐसा मानती हैं कि भाई हम तो कोई पाप कर्म करते नहीं, जैसे कि ठगी करना, चोरी करना, किसी का दुराचारी में कार्य करना, दुराचारी का कार्य करना। तो क्या हम ये मान लें कि इस समय भी कुछ ऐसी आत्माएं हैं इस दुनिया में जो पवित्र हैं, सभी अपवित्र हैं या सभी पतित हैं? क्या सिनारियो क्या है, सीन क्या है इस समय सृष्टि का?
मैं ऐसा कहूंगी, जब कलयुग सृष्टि है तो कलयुग में सभी कलयुग में हैं, रात्रि है तो सभी रात्रि में ही हैं। ठीक इसी प्रकार इस समय कलयुग की सृष्टि में प्रत्येक प्राणी में पतितपना आ तो चुका है। हाँ, किसी की मात्रा ज्यादा है, किसी की मात्रा कम है। यह अवश्य है कि कई मनुष्य आत्माएं इतनी श्रेष्ठ आज भी हैं कि अपने मुख से कोई कटु वचन नहीं बोलती हैं, किसी से दुर्व्यवहार नहीं करती हैं, परंतु संपूर्ण पावन का चिन्ह है कि वे किसी को दैहिक दृष्टि से भी नहीं देखती हैं, क्योंकि दैहिक दृष्टि से देखने में ये मेरा पुत्र है, ये मेरी वधु है, ये मेरा तन है, ये पराए का तन है, यहाँ पर भी तेरे और मेरे की थोड़ी भावना तो प्राणी में रहती है। संपूर्ण पावन उसी को कहेंगे जिनकी स्वयं की दृष्टि भी आत्मिक है और अन्य को भी आत्मा की दृष्टि से ही देखते हैं। उसमें न केवल स्वयं पवित्र बनते हैं लेकिन दूसरों में भी पवित्रता के प्रादुर्भाव करना प्रारंभ कर देते हैं। इन्हीं आत्माओं को मैं पवित्र आत्मा कहूंगी, और आज के जगत में सब अपने को आत्मा समझ दूसरों को आत्मा की ही दृष्टि से देखें, ऐसा दिखाई नहीं देता। इसे लगता है कि थोड़ा बहुत चिन्ह पतित पने का सब में आ जाता है।
तो फिर इन विकारों और अवगुणों से ग्रसित मानव को अगर अपना शुद्धिकरण करना है तो उसका सत्य मार्ग क्या है?
उसका सत्य मार्ग यही है जो परमात्मा शिव कल्याणकारी ने हम बच्चों को बताया है कि सर्व आत्मा रूपी बच्चों को एक संदेश दे दो कि देह केवल मात्र नाशवान चोला है। इस देह रूपी चोले का प्रयोग अवश्य करें, लेकिन प्रयोग करने वाली मैं चैतन्य शक्ति दिव्य ज्योति प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ ये विस्मित न हो जाए। और जिसको भी देखें, जिससे भी बातचीत करें, वो अपने रोल में कोई पुत्र है कोई पिता है, लेकिन ये केवल टेम्पोररी टाइम का रोल है, लेकिन इन शरीरों के अंदर भी आत्मा ही विराजमान। तो आत्मा स्वयं को समझ, सबको आत्मा की निगाह से देखे, जिससे हमारे में पवित्रता और अन्य में पवित्रता आ सके और अवगुणों से हम जीवन से किनारा कर सके।
बहन जी, महाशिवरात्रि पर्व के इस पावन सु अवसर पर आप हमारे दर्शकों को ये जो बातचीत आज हमने की, इस सब का जो सार है उसको कैसे वो अपने जीवन में धारण करें, उसके लिए आप क्या शब्द कहना चाहेंगे या क्या विचार प्रकट करना चाहेंगे?
मैं यही कहना चाहूंगी कि आज जो मानव सुख और शांति चाहता है और सुख और शांति को प्राप्त करने से पूर्व उसे अवश्य दुख और अशांति देने वाले वो तत्व, वो विष, वो विषैलापन जीवन से अवश्य निकालना होगा। और वो विषैलापन है ये पांचों विकार जो प्राणी में ग्रसित, जिनसे ग्रसित हो चुका है।
कौन से विकार?
ये है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी उसमें इंक्लूड होते हैं। इसलिए परमात्मा शिव को कल्याणकारी ही नहीं कहा जाता, उन्हें कामारी भी कहा जाता है, क्योंकि विकारों का नाश करने वाले वही हैं। और वो उनका यही संदेश है कि अगर जीवन को सुख और शांति चाहते हो तो जीवन से इस विष को निकाल दीजिए, सुख और शांति का अनुभव कीजिए।
तो शिव भक्तों, आपने देखा कि आज भागीरथ और पतित पावनी नदियाँ, जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम समझते आए हैं कि नदियाँ पतित पावनी हैं, उसके विषय में, दोनों के विषय में हमने कितनी स्पष्ट बातें सुनी कि भागीरथ वाकई में कौन है, कौन सा वो भाग्यशाली रथ है और क्या भाग्यशाली कर्तव्य किया। और अगर आत्मा को अपने आप को पावन बनाना है, शरीर की सफाई तो रोज ही करते हैं स्नान द्वारा, लेकिन अगर आत्मा को पावन बनाना है, अगर सच्चा आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना है तो कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे को इतना स्पष्ट रूप से दोनों बातों के विषय में बताया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।